Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है. इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं और इन तमाम खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद निखिल.
और शुरूआत करते हैं कार्यक्रम की, जिसमें अंग्रेजी में हेडलाइंस लेकर के हाजिर है लालिमा.
Thank you, Nikhil. Yes, friends, the headlines first. India's equity benchmark indices end higher. Sensex rises over 350 points and Nifty regains 25,000 level. GST Council decides to slash GST on cancer drugs, reduces rate from 12% to 5%. And sustainability is no longer a choice but a necessary obligation, says Steel and Heavy Industries Minister H.D. Kumaraswamy.
घरेलू बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 350 अंक से अधिक बढ़ा और निफ्टी ने फिर से 25,000 के स्तर को पार किया. वस्तु और सेवा कर परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया. और इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा, सतत विकास अब एक विकल्प ही नहीं बल्कि धरती के कल्याण के लिए एक आवश्यकता है. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में. घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज बढ़ोतरी के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 350 अंक से अधिक ऊपर चढ़ा और ये निफ्टी के साथ 25,000 के स्तर पर रहा. ये वृद्धि आईटी, टेलीकॉम, पावर और हेल्थकेयर के शेयरों में मजबूत खरीदारी के चलते देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 81,921 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 104 अंक की तेजी के साथ 25,041 पर पहुंच गया. दोनों सूचकांकों में लगभग आधा प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. एनएससी में 150 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ जबकि 21 अपने निचले स्तर पर रहीं. वहीं बीएससी के मिड कैप इंडेक्स में 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 1.5% से अधिक की बढ़त दिखाई.
India's equity benchmark indices ended higher today, with Sensex soaring over 350 points and Nifty regaining its 25,000 level, fueled by strong buying in IT, telecommunication, power and healthcare stocks. At the closing bell, the Sensex, which is a pack of 30 companies, was up 361 points at 81,921, and the NSE Nifty was up 104 points at 25,041. Both the indices rose nearly 0.5%. In the NSE, 150 companies hit their 52-week high, 21 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, mid-cap index gained more than 0.5% and small-cap index climbed more than 1.5%. In the Sensex index, 22 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were HCL Tech and Bharti Airtel more than 2%, Tech Mahindra, NTPC and Power Grid nearly 2%, and Axis Bank nearly 1.5%. Conversely, the major laggards were Bajaj Financial Services, lost nearly 2%, Bajaj Finance shed nearly 1.5%, and Hindustan Unilever declined nearly 1%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors traded in gains. The top gainers were telecommunication, which got an uptick 2%, utilities and power nearly 2%, and tech more than 1.5%. The top laggards were oil and gas, which lost nearly 0.5%. Financial services fell around 0.1%, and energy ended flat with a slim loss. The overall market breadth at the BSE was positive, as out of 4,042 companies, shares of 2,587 companies advanced, 1,352 declined, and 103 remained unchanged.
विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की कमजोरी के साथ 83 रूपये और 97 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान 101.65 पर था। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मार्केट पे अगर हम नजर डालें तो मार्केट का दायरा लगभग 81,000 से 82,000 के बीच में बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अभी एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। लगातार हम ये देख रहे हैं थोड़ा सा उतार चढ़ाव नजर आता है कुछ खास सेक्टर्स में। आज की बात करें तो ईवी पावर सेक्टर की बात, आईटी की बात करते हैं, ईवी सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
तो निखिल, आपने सही कहा कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार की जब बात करते हैं तो करीब सही बात है कि एक तेजी का माहौल रहा है, एक बढ़त का माहौल रहा है। और जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेशन के या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के, वो रिकॉर्ड आंकड़े आ रहे हैं। इस अगस्त के महीने के आंकड़े याद आए तो करीब 38,000 करोड़ रूपये का फ्रेश इनफ्लो हुआ म्यूचुअल फंड्स में। तो आप ये इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बाजारों में तेजी का माहौल है, इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं। और लेकिन उसमें भी जो सेक्टर्स हम ज्यादा देख रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, आज भी आईटी सेक्टर आपने जिक्र किया, आईटी सेक्टर के शेयर्स तेज थे। और इसी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की कंपनीज हैं तो ईवी सेक्टर उसमें भी उसका काफी बड़ा रोल है। खासतौर से जो भारतीय कंपनियां हैं, जो अब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, अगर आप टू व्हीलर कंपनीज की बात करें तो वहां बड़ा अच्छा प्रदर्शन में देखा है। और इवन इन कार्स अब खासतौर से कुछ कंपनियां हैं जो कि बिल्कुल स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं, वहां भी हम अच्छी पकड़ देख रहे हैं। साथ में एक बात मैं कहूंगा कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो रही है, तो जो ओनरशिप की कॉस्ट है, जो नई गाड़ी लेना चाहते हैं उनके लिए एक सहूलियत ज्यादा हो रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी डिमांड और बढ़ेगी।
इसमें मार्केट लिक्विडिटी का आप क्या रोल देखते हैं? हमारे अगर बाजार में इतना स्थायित्व तो हम देख पा रहे हैं, खासतौर पे कोई बड़ी घटना हम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है?
बिल्कुल निखिल, देखिए बड़ी आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। और तो बाजारों में एक हम जब बात करते हैं निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, तो एक फंडामेंटल्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, साथ में हम बात करते हैं टेक्निकल्स की कि जी टेक्निकल एनालिसिस होता है कि किस लेवल पे बाजार मूव करेगा, किस दायरे में मूव करेगा। लेकिन खास बात यह रही भारतीय बाजारों में कि जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, यानी जो लिक्विडिटी है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विटी, फ्रेश इक्विटी, और उसके सामने जो डिमांड है वो बहुत बड़े पैमाने पे हमने देखी उभरी है। पिछले तीन वर्षों को अगर हम देखें तो चार वर्षों को देखें, जो पैंडेमिक के बाद जब शुरुआत हुई तो करीब भारत में 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे एनएसडीएल में, एनएसडीएल सीडीएसएल में, वो आंकड़ा 18 करोड़ पहुंच गया है। और करीब 30 लाख नए अकाउंट्स हर महीने, आप इससे अनुमान लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर जो यंग बच्चे हैं, लेडीज हैं, दूसरे जो निवेशक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, करीब 30 लाख नए अकाउंट्स खुल रहे हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर एक पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन बाजारों में हो रही है, डिमांड बहुत ज्यादा है। और उसके सामने हम ये कहते हैं कि जो भारतीय बाजारों की सप्लाई है, यानी जो नई कंपनीज जो आ रही है आईपीओ लेकर के, वो अभी भी कम है कंपेयर टू द डिमांड। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बाजार में ज्यादा मजबूती है।
यू जस्ट मेंशनड the opening of the demat accounts, I think they are unprecedented right now. Never before have we had so many demat accounts opened by Indians. Puneetji, when we talk of the Sensex, we've been hovering around 80, 81, 82. And when we talk of the rupee, Nikhil just talked about the rupee, the currency, hovering around 83. Is this a sign of a stable economy? We just talked of the DMAT accounts. The GST collections are always increasing. We think this is the limit and then the limit goes on extending. And then we have also very important fact that our dependency on foreign investors is now a little less. I mean, now when the money goes out, our markets are not shaken. Is this a sign of a very stable economy, or is it a kind of a bubble or a mirage? How would you see this?
So I will definitely not call it a mirage or a bubble. Mm-hmm. Of course, there is a euphoria in this market, which is fine, because the economic conditions in India have been more buoyant than all other economies, all the other major economies of the world. In fact, big investors have called India the last standing bull market in the world. If you look at Europe, you look at even Japan, which had scaled new highs, it's pulled back by about 25%. Yes. So all major markets, in fact, except India, are going through a difficult time right now. Even US saw a very big pullback last month. So clearly, India's economic story has attracted a lot of investors, international investors and domestic investors, both. fortunately, when you mentioned that our dependence on foreign money has become less, I think it's a really good sign for us, because domestic money or domestic household savings being diverted a little bit to equity markets not only brings stability to Indian stock markets, it also brings growth to our household savings, because otherwise we will be earning 5, 6, 7%, 8% in bank deposits. This is the only way that probably households can, you know, grow their wealth at 12, 13% and they have tasted blood, so to say, and they are of course investing heavily,
yes,
sometimes, which is causing worry to the Reserve Bank of India. Yet I would say that it's good for Indian economy. So broadly, if you look at the macro factors of the Indian economy, they are positive. We are still growing at 6.7%, 7% maybe. If you look at comparable economies like China, China is really spiraling down. Their growth is down to 4%. And they say the real growth may be less than 4%.
Yes.
They have a demographic problem coming up.
Yes.
If you look at Europe, they have an issue in growth. And in fact, they're talking about cutting interest rates because economic growth is coming down. So clearly, if you look at India, I would say we still have this Goldilocks kind of a situation for us.
You mentioned China. That's very interesting because you talked about the demography. There is a negative population growth which is happening there. Can that be translated as a negative population growth can't be, can never, in that scenario, the economy can never grow high? Can we make that statement? And secondly, whatever is happening in China, the negative growth or the stall, the growth being stalled, is that, does that mean that it's advantage India?
So there are positives and negatives both. Positive, of course, is that China's economy and the ability to grow as it goes down, India will have an opportunity because we are the market where consumption will grow. So all the world's producers and technologies, they would like to come to India as the next growth story. They don't want to go to China because there's no longer going to be super growth in China. And that's quite obvious. Whether we tap into that potential or not is up to us. It depends on policymakers, it depends on private sector capex, it depends on a lot of other things. Our ability to tap into that demographic capital, so to say. So it is an opportunity for us. It should not be taken, we should not be complacent about it, we should not take it for granted, but we have an opportunity, great. And definitely, I can say one thing about China. China's best years are behind them as far as economic growth is concerned. Definitely, they're not going back to 8-10% kind of economic growth. But only other side effect of that could be, if growth or consumption in China goes down, China will start dumping its goods and services all over the world. So it will create pressures on other economies. Whether we become more protectionist, I don't know how the world will react to it. So if Chinese consumption goes down, it will definitely create pressure on the rest of the world as far as dumping of goods and services are concerned.
And also the fact that, you know, when you talk of manufacturing in our country, in India, manufacturing sector contributes about 17% to GDP. Our target is 25%. And not to forget that we have 25 lakh youth graduating every year. So that again could be an asset for us, right?
Definitely. So if you look at the GDP breakup, see, we are approximately 55% services industry, services GDP now, and 17-odd% is manufacturing, there's about 16-17% of agriculture economy. So clearly, while we want to push this the share of manufacturing, because it does produce a lot of skilled jobs, we want to push it to 25%, and Make in India and PLIs and all is geared towards doing that. Services, of course, continues to be the main bulwark of our employment and of our economic growth.
Punit, abhi aapne kuch der pehle IPOs ka थोड़ा सा जिक्र किया था उसके बारे में. अगर आज के ट्रेंड को हम देखें तो आजकल बड़ा ही उत्साही माहौल देखा जा रहा है आईपीओस को लेकर के. इवन कंपनीज भी अब आईपीओस को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस हो चुकी हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम यहां पर बटोर सकते हैं. तो इस पर आपके क्या विचार हैं?
तो आपने जो ये शब्द इस्तेमाल किया कि कुछ कंपनीज जो है वो बटोरना चाहती है पैसा, वो मुझे कभी कभी चिंतित करता है. तो आईपीओ, देखिए, आईपीओस की वही बात है कि कुछ अच्छी बातें और कुछ इसकी बुरी, मतलब कुछ नेगेटिव इफेक्ट है. कुछ कंपनियां, इसका तो बहुत अच्छा एक माहौल है भारत में, जहां पर जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो बाजार में आकर के अपने लिए कैपिटल जुटाती हैं, उनको बोरो नहीं करना पड़ता. क्योंकि देखिए, जब आप बोरो करते हैं तो आपकी कंपनी पे उसका भार पड़ता है, जोर पड़ता है, आप ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि ब्याज देना होता है, उसकी लायबिलिटीज होती है. और जब आपको ग्रोथ कैपिटल मिलता है, यानी इक्विटी मार्केट के थ्रू आपको ग्रोथ कैपिटल मिलता है, दो फायदे होते हैं. तो कंपनी को फायदा होता है क्योंकि उसको लो कॉस्ट कैपिटल मिलता है, और जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको फायदा होता है, कंपनी की ग्रोथ में उनको फायदा, उनको पैसा बनता है, उनकी वेल्थ क्रिएट होती है, तो दोनों को फायदा होता है। तो एक अच्छा इंडिया की कैपिटल मार्केट बहुत स्ट्रांग है, बहुत ग्रोथ हम देख रहे हैं, लेकिन इसका कुछ लोग शायद नजायज फायदा भी उठा रहे हैं। हमने देखा अभी एसएमई आईपीओ में हमने देख रहे हैं कि कुछ मैनिपुलेशन है, तो दोनों चीजें हैं, पर ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छी मार्केट स्ट्रांग इंडिया के लिए डेवलप हो रही है।
अभी अगर देश के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आजकल स्टार्टअप का बहुत ही ज्यादा योगदान हमारी इकोनॉमी में होने लगा है और गवर्नमेंट भी लगातार प्रमोट कर रही है स्टार्टअप्स को। भी एक खबर यह आई कि एक बेंगलुरु के स्टार्टअप को अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़ा सा ऑर्डर दिया है। ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोनों ही चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए स्टार्टअप जो इकोनॉमी है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ग्रोथ का। एक पुराना जमाना था जबकि लैंड और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते थे लैंड लेबर कैपिटल, ये एक कुछ पूंजीपतियों के हाथ में रहता था और वही बिजनेस करते थे। लेकिन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो बच्चे जो पढ़कर निकले आईआईटी से बढ़कर निकले और उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी और नए विचारों के साथ स्टार्ट करी, उनको एक पॉजिटिव माहौल मिला है पिछले 10 वर्षों में। जो पूरा स्टैंडअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया जो पूरा एक इकोनॉमी एक मैसेज था, और सबसे बड़ी बात जो हमने इससे पहले बात करी जो उनको कैपिटल भी आज मुहैया हो रहा है। पहले उनका कैपिटल नहीं होता था बिजनेस बिल्ड करने का, तो आज इंडिया की स्ट्रांग कैपिटल मार्केट्स उनको कैपिटल प्रोवाइड कर पा रही है, उनको पैसा मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। और लेकिन साथ में जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जो एक्सपेरिमेंट करने का एक जिसे कहते हैं हिम्मत, वो स्टार्टअप में होती है। वो बड़ी कंपनियां एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती, उनका खर्चे इतने होते हैं, इतनी बड़ी उनकी नंबर्स होते हैं कि वो स्टार्टअप्स में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत में, और हम देख रहे हैं क्योंकि हम खुद बहुत क्लोजली जानता हूं पूरे इस एनवायरमेंट को, स्टार्टअप एनवायरमेंट को, बहुत अच्छा माहौल है भारत में और बहुत अच्छे प्रकार से अब लोगों में कॉन्फिडेंस है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का, वो एक अच्छी चीज।
यस इंडीड, इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड विच इज वेरी वेरी हार्टनिंग, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव ऑफ हैविंग 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज, ऑल दिस विल ऑल्सो एनहांस, वी हैव ऑल्सो बीन काइंड ऑफ टाइटनिंग अप एंड स्ट्रीमलाइनिंग द टैक्स सिस्टम विद इन द स्टार्टअप सिस्टम। All right, let's move on. The Goods and Services Tax Council, in its 54th meeting held under the chairpersonship of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday, decided to slash GST on cancer drugs by reducing the rate from 12 to 5% to bring down the cost of cancer treatment. The GST rates for extruded or expanded products, savory or salted products, have also been reduced from 18 to 12%. The finance minister said that funds given for research to universities established by the law of center state governments and those who have obtained income tax exemption are exempted from GST. The council has recommended rollout of a pilot for business to consumer, that is B2C e-invoicing. On the other hand, GST rate on car seats has been increased from 18% to 28%. The council has also decided to charge 5% GST on transport of passengers by helicopters on seat share basis and 18% on helicopter charter. The GST Council has decided to set up two group of ministers, GOMs, first on reducing tax rate on life and health insurance and the second for compensation cess. The finance minister said the group of ministers on GST rate reduction on medical health insurance will submit its report by the end of October this year, and a meeting to be held in November will decide on the issue of rate reduction. Puneetji, so all this going for Kedarnath or Badrinath or Vaishno Devi using the helicopters will have to pay a little less. And also those who are fond of having their namkeen with the good old chai would also have to pay less, and much more. Your comments on the entire, there are many stories within this story. Your comments.
So clearly this GST Council meeting actually came with a lot of anticipation because there were a lot of important issues on the table. One of course is the issue of extending the levy of cess on GST beyond 2026, because that was supposed to be a temporary levy on GST. So that has been, some decision will be taken over the next few weeks, I'm sure. Mm-hmm. But at the same time, now some rebalancing of GST rates has happened. Of course, the key issue, which is levy of GST on insurance premium, which is basically for life insurance and health insurance, which is a major issue, that a decision principle was taken that it will be rationalized. A final decision will come in November, but I am sure it will definitely either be reduced or be scrapped altogether. So clearly this GST meeting, I would say, was a preparatory meeting to the next big meeting, which is in November,
uh-huh.
which is where some big steps will be taken with respect to some building materials, GST, rationalization of taxes on health insurance, you know, which really touches everyday life.
India has always been accused of spending very less on R&D, and which promoted our students to go out and also gave them the edge, the students who are studying abroad. Private industry has never come forward to promote R&D, citing many reasons. This can help?
This surely will help. And it's been done very prudently, because they've said that, okay, all those institutions which have either been set up by law, by the center or the state governments, or which have already obtained income tax exemption. So they're all, it is not as if that somebody comes and just says that I'm doing R&D and claims exemption.
Mm-hmm.
So they've set some bar saying that, okay, these institutions will be allowed, which will, I think, should cover all the major universities and colleges and institutions.
Mm-hmm.
So it's definitely welcome, and we really need to step up as far as R&D effort is concerned.
Absolutely.
और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं. एशिया के प्रमुख पांच शेयर बाजारों में से तीन में बढ़त देखने को मिली आज. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में लगभग आधा प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.3% बढ़ा. हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% के लाभ में था. दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में आधा प्रतिशत की कमजोरी देखने को मिली और जापान का निक्केई 0.1% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ. बात करें यूरोप की, तो यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में अंतिम समाचार मिलने तक यूरोप के तीन प्रमुख सूचकांकों में से दो आज नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे. फ्रांस के कैक में आधा प्रतिशत की गिरावट देखी गई और जर्मनी का डेक्स 0.3% फिसला था. वहीं लंदन का फुटसी 0.2% के लाभ के साथ कारोबार कर रहा था.
All right, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2024 at India Expo Mart in Greater Noida on the 11th of September. He will also address the gathering on the occasion. It has been the vision of the Prime Minister to position India as a global hub for semiconductor design, manufacturing and technology development. In accordance with this vision, Semicon India 2024 is being organized from the 11th to the 13th of September with the theme Shaping the Semiconductor Future.
पुनीत जी, ये जो कार्यक्रम हो रहा है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है. लगातार भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताओं को विस्तार देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने और देश में ही सेमीकंडक्टर को हब बनाने के लिए प्रयास कर रहा है. इसी सिलसिले में कल ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है. आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ मीटिंग की है. ये सारी चीजें आपको अगर निवेश की दृष्टि से देखें तो हमें कितना माहौल बनाता हुआ दिखता है.
देखिए निखिल, जो आपने कहा कि जो सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम है, इनफैक्ट ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ बहुत चुनिंदा देशों के हाथ में थी. पहले अमेरिका के हाथ में, या वो मान लीजिए जापान या ताइवान के हाथ में, और चीन उसमें अपनी काफी पोजीशन बनाने की कोशिश.
ताइवान में भी,
ताइवान लीडिंग है, लेकिन ताइवान और अमेरिका का आप कह सकते हैं एक तरह से भागीदारी है. तो क्लियरली जो भारत का एफर्ट है वो बहुत सराहनीय है. बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है, और दूसरा इस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. ये काफी अभी हम बात करते हैं तो करीब 70 से 80 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया टाटा ग्रुप ने भी. तो आप जानते हैं कि ये इसके लिए प्रमोट करना बहुत जरूरी है. सरकार को जो नीतियां हैं हमारी वो भी इस पूरे बड़े निवेश के लिए बहुत उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा, और मुझे लगता है एक बहुत सराहनीय कदम है. और सच आप मुझसे पूछें, देखिए ये आसान नहीं है लेकिन बहुत दूरदर्शिता का कदम है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करना और इस एनवायरमेंट को प्रमोट करना.
और आगे बढ़ते हैं. इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि टिकाऊ विकास अब एक विकल्प नहीं बल्कि धरती के कल्याण के लिए एक आवश्यक बाध्यता है. हरित इस्पात रिपोर्ट के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमारस्वामी ने कहा कि इस्पात जैसे एक क्षेत्र का पर्यावरण पर व्यापक असर पड़ता है, इसलिए निरंतरता के लिए आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए. श्री कुमारस्वामी ने हरित इस्पात निरंतरता का मार्ग रिपोर्ट का शुभारंभ किया. ये रिपोर्ट इस्पात उद्योगों को कार्बन रहित बनाने पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हरित इस्पात को लेकर जानकारी प्राप्त करने और उद्योगों की सतत कार्यप्रणाली में उद्योग जगत के पेशेवरों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक होगी. आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के तकनीकी विभाग के निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि SAIL ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से इस्पात उत्पादन सुधारने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए काम चल रहा है. पुनीत जी, ये तो खबर हुई इस्पात जगत से संबंधित, लेकिन मैं आपसे पूछना कुछ और चाहता हूं. पूछना मैं ये चाहता हूं कि देश में एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट के बारे में एक अनुमान लगाया गया कि आने वाले 4 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने वाला है, तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप इस पर क्या कहेंगे?
देखिए मजे की बात यह है निखिल कि आज से कुछ वर्ष पहले, 7-8 वर्ष पहले एग्रोकेमिकल्स हम इम्पोर्ट किया करते थे
जी,
क्योंकि अगेन हमारी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट बहुत होती थी। आप जानते हैं फर्टिलाइजर हम बहुत बड़ा इम्पोर्ट किया करते थे, अब भारत उसमें आत्मनिर्भर बना और एग्रोकेमिकल्स में भी एक ये एक्चुअली ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, जो यहां पर एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते थे वो भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक और पूरी विश्व में अगर हम देखें इसका जो विकास है वो भारत जैसे देश ही कर सकता है, क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत बड़ी है, छोटे देश ये विकास नहीं कर पाते। तो हमें और इसके लिए हम यूरोप पे बहुत डिपेंडेंट हुआ करते थे इम्पोर्ट्स के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अगेन क्रिटिकल एक स्टेप है, जो कि पूरे जो एग्रीकल्चर एरिया है, जो खेती का हमारा इकोसिस्टम है, उसको डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट, मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स, यूएस स्टॉक्स गेन्ड मोर देन 1% येस्टरडे एज इन्वेस्टर्स लुक फॉर बार्गेन्स आफ्टर द प्रीवियस वीक्स सेल ऑफ अवेटिंग फॉर इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स एंड द फेडरल रिजर्व्स पॉलिसी डिसीजन। द S&P 500 एंड नैसडैक कंपोजिट इंक्रीज्ड नियरली 1.5% एंड डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एडवांस्ड मोर देन 1%। एंड मूविंग ऑन टू ऑयल, oil prices fell today amid weak Chinese demand and the US supply disruptions from Tropical Storm Francine. In the global crude market, Brent crude was trading at 1.3% down to trade at $70.89 per barrel, and the US West Texas Intermediate WTI was trading nearly 1.5% down at $67.78 per barrel when reports last came in. So, I would like to ask you on both the US markets, US recession happening, not happening, happening, not happening, and the crude oil.
So, US markets, of course, are they're going through a wild swing. In fact, you would remember that on Monday, mm-hmm. the markets had fallen a lot, and mm-hmm. then they rebounded yesterday. So, clearly, I think in the run-up to the US Fed interest rate cuts, they are still trying to make up their mind whether whether they are in a recession and therefore the market should correct, or whether they should celebrate the fact that US Fed is going to cut rates.
Right.
So market is going through this, and it usually happens. We've seen this kind of vacillation in the markets just ahead of big economic decisions, which will come on 17th, 18th of September, where interest rates might be cut. On the other topic that you raised,
oil.
See, interestingly, when OPEC is still cutting output to some extent, and mm-hmm. they're holding back production of more than 4 million barrels, we see that the prices have gone down.
Mm-hmm.
And more than that, the gross refining margins in Singapore, in fact, they have turned negative. So clearly the product prices have also come down a lot. And my own guess is that going forward, we will see weak economic conditions. They will influence oil prices significantly lower. So my sense is that it's good for India because our product prices are going to be lower. And it will definitely be, give a positive momentum to Indian economy.
और आगे बढ़ते हैं, श्रोता आपको बता दें सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.42% बढ़कर 72,150 रूपये प्रति दस ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.61% बढ़कर 83,990 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.36% बढ़कर 71,889 रूपये प्रति दस ग्राम चल रहा था, और दिसंबर आपूर्ति किए जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.54% बढ़कर 84,098 रूपये प्रति किलोग्राम चल रहा था। पुनीत जी, फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगा श्रोताओं को इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
देखिए, सबसे कि जोश में वो इन्वेस्ट न करें, बहुत मौका मिलेगा, और मार्केट्स में थोड़ा इस वक्त रुक करके अगर देखें और वैल्यू इन्वेस्टिंग करें और लंबे अरसे के लिए करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, बहुत बड़ा पैसा मार्केट में न लगाएं, तो मुझे लगता है कि वो सही समय रहे।
यानी कि एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलना ज्यादा फायदेमंद होगा।
बिल्कुल, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जोश में और इस वक्त बहुत बड़ा पैसा मार्केट में न लगाएं, थोड़ा करेक्शन की वेट कर सकते हैं।
बिल्कुल पुनीत जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
धन्यवाद निखिल।
All right, before we close, friends, here's a reminder of the headlines. India's equity benchmark indices end higher. Sensex rises over 350 points and Nifty regains 25,000 level. GST Council decides to slash GST on cancer drugs, reduces rate from 12% to 5%. And sustainability is no longer a choice but a necessary obligation, says Steel and Heavy Industries Minister H.D. Kumaraswamy. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Nikhil Kumar signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.